ओम शांति। आप सबको बाबा के घर में कैसे लग रहा है? ड्रामा अनुसार जो हम सब ने सोचा था और सीन चेंज हुआ समय से पहले आप सभी बाबा के घर में 2020 में। कई बहनों से जब बातचीत होती थी कह देते कि शायद 2020 में बाबा के घर में नहीं आना होगा, लेकिन देखिए भगवान बैठा हुआ है, सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। ये बीमारी भी हमारे लिए आया है, मानते हैं या डर लग रहा है? तो जो भी भट्टी के कार्यक्रम सभी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप सबके जीवन में वैराग्य वृत्ति जागृत हुआ होगा, या कुछ बचा कुचा है? क्योंकि ये जो 18 जनवरी की महीना है, हम अव्यक्त दिवस मनाना चाहते हैं, तो उसकी जो प्रथम गुण बाबा का बेहद की वैराग्य वृत्ति, और उसमें दो अभ्यास से आता है जो बाबा की जीवन की अभ्यास है, उसी बात को लेकर के अभी हम 12:30 तक कुछ अभ्यास करेंगे। एक लेन देन होगा, आप सबको एक एक डिब्बी मिली हुई है, रखा हुआ है सबके पास। अच्छा, जिनको नहीं मिला है बांटे, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करेंगे, एक 10 मिनट का एक्सरसाइज। हम इसको दो भाग में बांटेंगे। एक तो जो भट्टी में आप लोगों ने सीखा है, कई बात सुने होंगे, उसमें आज कुछ क्वेश्चंस आंसर के रूप में बाबा की मुरलियों से आत्मा से संबंधित और अनुभव से संबंधित दो बात पर फोकस करेंगे इस अभ्यास को आगे लेते हुए। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हम 2 मिनट के लिए एक अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक सवाल है, बाबा हमें सिद्धि स्वरूप बनाते हैं, तो जब सिद्धि स्वरूप आत्मा बनती है तो किस प्रकार की योग से हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं? एक जमाने में जब शुरू शुरू में हम मुरली सुनते हैं, बाबा बताते हैं कि जब संगठित रूप में योग होता था, दादियां योग करते थे, तो यहां योग चल रहा था और पीछे आत्माओं को साक्षात्कार होते थे, और जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे वो तब होता था। तो उसके मुख्य कारण बाबा ने जो कहा, ये अभी इस समय काम में आने वाला है, अभी अभी 2 मिनट में। जब संगठित रूप में हम किसी भी अभ्यास में बैठते हैं, तो उस समय हमें अचल होकर के बैठना है, स्थिर बैठना है। अगर हम स्थिर बैठते हैं, तो जब से हम स्थिर अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, तो सिद्धि स्वरूप पहले आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की सिद्धि हासिल करती है, और उसके साथ साथ आगे अन्य आत्माओं को साक्षात्कार कराने की निमित्त बनती है। ये जब भी आप संगठित रूप में बैठते हैं, ये एक एक आत्मा के लिए बात है, जो करेगा सो पाएगा। जब भी आप बैठो, आप जिस जगह पर बैठ गए तो बैठ जाओ, हलचल में नहीं आना है। ये एक मुरली है, आप मुरली की डेट नोट कर सकते हैं, 9/12/1975 की मुरली, सबको पढ़ना चाहिए, खास करके जो सेंटर पर रहते हैं और जो भट्टी में आते हैं। एक पैराग्राफ की मुरली है, ये आपकी भट्टी की दिनचर्या बदल देगी सबके। बाबा उसमें गारंटी किया है, आप ऐसे बैठोगे तो सिद्ध स्वरूप होते हुए साक्षात्कार मुहूर्त बन जाएंगे आप। 9/12/1975 की मुरली है, तो इसी को लेकर बढ़ेंगे। आप सबको मिल गया तो भाई तो लाल लाइट करेंगे। आप जो आपको मिला है, आप उसको अपने हाथ में रखिए, इजीली, जैसे अपने हाथ की हथेली पर रखिए उसको, और जो आपके हाथ में दिया गया अपने आप से एक सवाल करे, वो क्या चीज है? कुछ समझ में आ रहा है क्या है? आपको दिख रहे हैं हट केस जैसे एक सामान है, प्लास्टिक हट केस, वो हट केस है, उसके अंदर क्या है? आप खोल के क्यों देखा जब बंद? यही तो ट्रिक था। चलो, आपको कोई जानकारी नहीं है आप उसके अंदर क्या है, जिन्होंने खोल के देखा है आप अभी भूल जाओ क्या देखा है, भूल सकते हैं? जैसे कि देखा ही नहीं है, ये भी एक एक्सरसाइज है, आपको देखते हुए नहीं देखने का अभ्यास। अगर आपने देखा है भूल जाओ क्या देखा है, एकदम मेमोरी को वाइप आउट कर दो। तो आपके हाथ में की चीज है उस पर देखो कि वो क्या किया, उस आपको जो दिख रहा है सामने वो एक डिब्बी है और किस मटेरियल से बना हुआ है, आंसर अपने आप को दो। उसमें क्या चीज है, कलर भी है, कलर के साथ साथ आकृति है, शेप एंड साइज जिसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा रिवर्स करो अपने तरफ, ये डिब्बी जो है शरीर है। सुनते हुए आप मन बुद्धि में एक्सरसाइज करते चलिए, रंग रूप आकार शरीर सबकी अलग अलग है। और कोशिश करो समझने के लिए उस डिब्बी के अंदर क्या है। आप कलर भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, अंदर क्या चीज है, अपने आप से सवाल करते हुए उस डिब्बी के ऊपर की ढक्कन को खोलिए। और जब खोले अपनी स्मृति को चेक करें, आप कौन सी भावना के साथ डिब्बी को खोल रहे हैं, खोलते हुए क्या दिख रहा है उसमें, एक मोती। मोती की कलर क्या है, साइज सबको एक जैसा मिली हुई है। तो ये समझ हमें मिल रहा है, हम आत्माएं जिस शरीर में विराजमान हैं, वो शरीर तो अलग अलग हैं आकृति प्रकृति को लेकर के, लेकिन उसमें जो मोती रूपी आत्मा विराजमान है सबकी शेप एंड साइज एक ही जैसे हैं। फिर सवाल आता है, आत्मा की शेप एंड साइज एक है, गुण सबकी अलग अलग एक है, सबके अंदर गुण भी एक ही जैसे, सत्वगुणी आत्मा है, और आत्मा को जो भी वरदान मिला हुआ है वो अलग अलग एक है। 3 मिनट इसी स्मृति में, ये शरीर एक डिब्बी है, उसके अंदर मैं आत्मा मणि हूं। तो उस मोती को देखते हुए अपने बारे में चिंतन करें आप कि मेरे बारे में, मेरा परिचय जो बाबा ने दिया है, और जैसे बाबा मुझे देखते हैं क्या मैं स्वयं को वैसे देखती हूं, चेक करें। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, अंतिम समय में आने वाली पेपर में वही पास होंगे जो ज्यादा से ज्यादा खुद के पास रहते हैं, स्वयं के पास और बाबा के पास। तो इसी को लेकर के एक आपके सबके पास पेन पेपर होगा, है ना, तो कुछ अभ्यास बाबा की मुरलियों से लिया गया है, जो भट्टी के अंतर्गत बाबा हम बच्चों से बात किया है क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इस प्रश्न के ऊपर, जो बाबा धरती पर आते हैं हमें अपना परिचय देते हैं, हम सभी आत्माओं को। तो बाबा आने के बाद जब योग लगाते हैं तो बाबा हमारी आत्मा में किस चीज की परिवर्तन कराते हैं। बाबा आए, हम बाबा को योग लगाया, तो हमारे आत्मा में कौन सी चीज को बाबा परिवर्तन कर देंगे, बाबा का काम है जी। बाबा बुद्धि को बदलते हैं, बुद्धि को परिवर्तन करते हैं। जितनी देर आपकी बुद्धि बाबा के पास लगी रही उतनी देर आपकी बुद्धि में परमात्म गुण शक्तियां भर जाता है, आपकी बुद्धि दिव्य बन जाती है। मन और संस्कार को परिवर्तन करने का काम किसकी है, हम आत्माओं की। हमको मेहनत करना है, मन को लगाना है, और संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अपने स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लेकिन ये सारी परिवर्तन आता है बुद्धि के आधार पर। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को बदलने की दो एक्सरसाइज, साकार मुरली में अव्यक्त मुरली, इसी को रिपीट हुआ है। अगर बुद्धि योग बाबा से एक टिक लगाना है तो दिन भर बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, सुना होगा मुरली आपने, ज्ञान की पॉइंट टपकता रहे, अर्थात आए बार बार बाबा ने आज क्या कहा। और जितनी बुद्धि में ज्ञान की बातें टपकती रहेगी तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होंगे। और उसी के आधार पर जब बाबा कोई पूछते हैं, एक मुरली में था, बाबा पूछ रहे हैं बच्चे आप जब बुद्धि को लगा के उसकी आंसर ढूंढते हो तो बुद्धि क्या होता है, क्लीन होती है। तो ये हम रोज साकार मुरली में प्रश्न उत्तर सुनते हैं, लिखते भी हैं। और आप चेक करना प्रश्न उत्तर, जब भी बाबा प्रश्न पूछते हैं बहने तो मुरली तुरंत उत्तर आपको सुना देते हैं या पूछ लेते हैं सुनाते हैं, लेकिन आप उत्तर लिखना नहीं है आगे के एक बाद में लिख लेना। एक बहुत सुंदर अभ्यास है, इस पर हमने करके एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। 5 लोगों को लिया, प्रश्न दिया, उनको कहा गया कि आप खुद उत्तर सोचो, फिर उनकी ईईजी रिकॉर्डिंग किए गए और उसके बाद बाबा के उत्तर सुनाया गया उनको कि वो उत्तर को कंपेयर करें। उनकी ईईजी रिकॉर्डिंग किया गया, दोनों में बताओ किसके अच्छा हुआ होगा। जब उनको लगा कि मेरी, जैसे बाबा के उत्तर सुनने लगे ना तो बुद्धि में आता है रे मैं तो ये भी ठीक नहीं सोचा, बाबा की जैसा मेरा सोच नहीं चली, तो फिर संकल्प चलने लगता है, या संकल्प नहीं है चिंतन उसको बोलते हैं। तो हमने देखा है कि जो बुद्धि की आधार पर परिवर्तन होते हैं, जो बुद्धि की फैकल्टी है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर अच्छी डेवलपमेंट को जब मुरली के साथ कंपेयर करके चिंतन करते हैं तो माना। आप फिर चेक करेंगे शब्द सवाल आत्मा से संबंधित है, तो आप मुरली सुने हैं और मुरली के बारे में आपको पता है और आपका परिचय के बारे में आपको पता है। अगर इस समय आपके सामने मुरली ना हो, आप उस बात को कितना समझे हो अपने बारे में जो बाबा आपको कहा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस को ढूंढना है और उसी डिफरेंस को कम करना है। और जितना ज्यादा डिफरेंस हम कम करेंगे फिर हमारी स्थिति जो बाबा कहते हैं अंत समय में अचल, अंगत समान अचल अडोल, बुद्धि की लाइन क्लियर, और बाबा कहते हैं बाप समान बन के आप चल पड़ेंगे। और सहज पुरुषार्थ का आधार जो है बाबा ने जो कहा, हम कितना समझे, हम कितना किया है उसके आधार पर। तो चलिए आप सबके सामने एक प्रश्न है, अंतिम समय में सेफ्टी का साधन क्या है, आपको लिखना है, बोलना नहीं अभी, अभी हम बातचीत नहीं करेंगे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके हम आंसर सीट पर, क्वेश्चन है अंतिम समय की सेफ्टी का साधन क्या है। आप जो लिखेंगे सही, उसमें गलत आंसर कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कंपेयर करेंगे मेरा आंसर बाबा के आंसर में कितनी डिफरेंस है, और आपको अच्छा लगेगा हाँ बात सही है। हर एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट का गैप रहेगा, फिर आप आंसर लिखेंगे, जितने भी एक सेंटेंस लिखिए 2 लिखिए, उसमें कोई ये नहीं है। और ये जो आप कर रहे हैं, आपको ये संकल्प इसमें कनेक्ट होना है कि जो मैं सोच रही हूं बुद्धि के द्वारा, मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसको साधना के रूप में लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप नहीं दे रहे, आपको बुद्धि चल रही है। बाबा कहते हैं उत्तर है अंतिम समय में सेफ्टी की साधन याद की भट्टी, सही लग रहा है आंसर, दीदी क्या कहेंगे, आंसर सही है याद की भट्टी। ये 70 के एक मुरली बाबा ने कहा था, बच्चों ने पूछा बाबा समय बदल रहा है, आप तो चले गए अभी हम कैसे सेफ रहेंगे, तो बाबा ने कहा भट्टी करो, और वो भट्टी कौन सी है, याद की भट्टी। अभी अभी रिसेंटली मुरली आया था गीता पाठशाला वालों से बात करते हुए, बाबा ने पूछा है अशरीरी आत्मा बनने की जो बात कहा है वो पहली पाठ या अंतिम पाठ, लिखना है उसमें, लिखना है। पहली पाठ कौन सी और अंतिम सिद्धि कौन सी उस मुरली में था, एक पढ़ाई विधि और दूसरी सिद्धि। ज्ञान मार्गिंद बाबा विधि और सिद्धि बताया है, कौन सी विधि और कौन सी सिद्धि। उत्तर है अशरीरी आत्मा बनो, ये विधि है, और सिद्धि है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। यही सभी को, कुमार हो कुमारी हो समर्पित हो, सबके लिए यही पेपर आने वाला है। बुद्धि चल रही है सबकी या नींद आ रही है, कोई पीछे सोच नहीं रहे? प्रश्न है आत्मा के हल्केपन की निशानी क्या है। कि आप भट्टी में आए हैं, अभी आप हल्केपन की अनुभूति कर रहे होंगे क्लास सुनते सुनते। तो हल्केपन की निशानी आप नोट करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है जब भट्टी में बैठते हैं इसको समझना, समझेंगे तब अनुभव होगा। जो भी लिखना जानते हैं लिखने की कोशिश करें, कम से कम एक दो सेंटेंस तो लिखिए। ये प्रश्न की डेट भी नोट करिए आप, ताकि आप बाद में 10/4/1991 ये तपस्या वर्ष की मुरली है। बाबा उत्तर देते हैं आत्मा की जो विशेष तीन शक्तियां हैं मन बुद्धि और संस्कार, ये हल्की होती जाएगी और तुरंत क्या करना क्या नहीं करना आंसर में दे रहे हैं। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की होगी और बुद्धि में निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी और कोई भी ऐसा संस्कार नहीं होगा आपको आपकी तरफ उनकी तरफ आकर्षित करे। और वो मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं ऐसे लाइट अनुभव होगा कि जैसे पीछे क्राउन है, भट्टी वालों से बात करते हुए। तो चेक करो, अभी भी दो दिन समय है आपके पास, 20 नाखूनों की जोर लगा दो। जब तक पीछे लाइट अनुभव की अनुभूति न हो इस हल से बाहर नहीं उठना है मुझे। अगर आपके पास मोबाइल है तो लाइट की अनुभूति नहीं होगी, नोट कर लीजिए आप। अभी अभी 4 दिन पहले अमेरिकन साइंटिस्ट में एक आर्टिकल आया है, उसका नाम है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, जो आईटी वाले जानते होंगे इसके बारे में। अब इतना ज्यादा बीमारी बढ़ रही है इसके बारे में ब्रेन में, तो लोगों के लिए कोई दवाई नहीं है, दवाई नहीं है तो क्या कर रहे हैं, हर एक जो इस प्रकार बीमारी में है उनको एकांतवासी बना रहे हैं। आप सोचिए बाबा की जो साधना का जो स्वरूप है वो आज कैसे लौकिक लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो ऐसे जगह पर उन लोगों को भेज रहे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क ना पकड़े, और 32 डेज में लोग बिना मेडिसिन ठीक होकर आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे जो मैं सुना रहा हूं ऐसे ऊपर से नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद मोबाइल लगा करके जो इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं ना यहां पर, एक बार पुणे में लेकर आए थे राहत निमित्त 25 भाई बहनों का टेस्ट किया था उस समय में। जब लगा देते हैं तो स्क्रीन पर जब ईईजी चलता है उस समय, तो वहां पे मैं बाकायदे एक मोबाइल रखा, और मोबाइल रखते ही जो अभ्यास करने वाली बहन थी वो तो बहुत बढ़िया अभ्यास कर रही थी, जैसे मोबाइल रखा और उसकी जो ईईजी पैटर्न चल रहा था 64 चैनल में जिगजाग आ गया, जिसको ईईजी की लैंग्वेज में कहा जाता है नॉइज, उसको फिल्टर करना पड़ता है उसकी वे पैटर्न को देखने के लिए। आप सोचिए एक मशीन जो इंसान ने बनाया है वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट की इफेक्ट में इतना ज्यादा प्रभाव प्रभावित हो रही है, तो जब हम एक टिक होकर के बाबा की याद में बैठते हैं, और बाबा की याद में जो बैठते हैं वो ब्रेन आत्मा बहुत यूज करती हूं उस समय में, दिखता है क्लियरली। अगर मैं संकल्प देता हूं कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट काम कर रहा है, दिखता है मशीन में। आप एंजल हो तो दिखता है चेंज हो रहा है ब्रेन में, और उस चेंज को रिवाइव करने के एक ही तरीका है कि ऐसे जो डिस्टर्ब करने वाली बातों से स्वयं को दूर रखें। आत्मा की वेट बढ़ती है, कारण क्या है, वेस्टेज की वजह से। बाबा मुरली में 79 की मुरली में कहा है, जब सड़ी हुई भोजन खाएंगे तो क्या होगा, वजन बढ़ेगी। सड़ी भोजन क्या है, व्यर्थर नेगेटिव परचिंतन परमथ परदर्शन, इसको बाबा बोलता है, ये आत्मा की भोजन नहीं है। तो उस तरीके से जो साधन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो भी क्या है, वो भी उस समय व्यर्थ है। इसलिए हल्केपन की अनुभूति करने के लिए हम उन सभी साधनों से परे रहे जब योग अभ्यास करते हैं, खास करके संगठित रूप में, और एक दूसरे को मदद करते। इस समय हमारी पूरा वातावरण को लेकर के जो बन रहा है, हमारी शारीरिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति और बायोलॉजिकल जो परसेप्शन बन रहा है, वो सारा डिटोरेट होता जा रहा है। और साइंटिफिक इंक्वायरी यही कहता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव हो, एलिवेट, आजकल एलिवेटेड थॉट की बात हो रहा है, एलिवेट हो, आप खुद को भी सस्टेन कर सकते हैं, दूसरों को भी, दूसरों की पालना कर सकते हैं आप। ये बाबा भी कहते हैं पहले से ही। तो जब आप योग भट्टी में बैठे, कोशिश करिए, एक्चुअल नियम तो ऐसा होना चाहिए कि नो, बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए अंदर, ताकि हमें एक वातावरण बना के रखे। तो हल्केपन की अनुभूति के लिए साधन से परे रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भट्टी में बैठते हैं बाबा, तख्त नशीन की बात बार बार करते हैं, तो तख्त नशीन आत्मा की निशानी क्या होगी? ये भट्टी की प्रश्न थे, इसकी डेट है 22/1/1971 की मुरली है, 22/1/1971। जब भी भट्टी में आप बैठते हैं, तख्त नशीन होके बैठना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप आत्मा यहां पे नहीं बैठती है, तो आत्मा को भी टेकअप नहीं कर सकती है। एक उदाहरण लीजिए, फ्लाइट को अगर फ्लाई करना है तो कहां पर होती है फ्लाइट, अपने रनवे में, उसको जो ट्रैक फिक्स होता है, ट्रैक में फ्लाइट होती है तभी वो टेकअप करती है, उसके बिना कभी वो टेकअप नहीं कर सकती है। तो हमारी जो आत्मा है उसकी रनवे कौन सी है, पहले इसकी सीट। जब भी आप याद की यात्रा करो, मैं आत्मा भ्रुकुटी आसनधारी हूं, इसके बिना संकल्प के कभी भी परमधाम की यात्रा नहीं करिए। और बाबा इसमें कह रहे हैं, उत्तर में बाबा कहा है, जो तख्त नशीन आत्मा उनकी निशानी है, एक तो जब कोई भी तख्त पर बैठते हैं तो दो चीज उनको मिलता है, तिलक और ताज, और उनकी निशानी होगा वो समय हमेशा दिल तख्त पर विराजमान होंगे। दिल तख्त किसके दिल तख्त पर, बाबा के दिल तख्त पर, और उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति, उसकी तिलक चमकता हुआ दिखेगा, अर्थात स्मृति में मैं कौन हूं, अविनाशी आत्मा हूं। दूसरी बात बाबा कहते हैं, वो आत्मा हमेशा दूसरे आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना और शुभावना रखेंगे। तीसरी बात है, उनकी संकल्प वचन और कर्म बाप समान हो, उस स्मृति में रहेंगे। चौथी बात, जब भी वो सर्विस करेंगे तो योगी सो सहयोगी आत्मा की स्मृति में रहेंगे, योगी सो सहयोगी आत्मा की स्मृति में रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, आत्मा में विल पावर कैसे आएगी, क्योंकि विल पावर के बिना हम बैठ भी नहीं सकते हैं एकाग्रचित होकर के, जो ब्रह्मा बाबा का नंबर वन क्वालिटी था, दृढ़ता। इस प्रश्न की डेट है 8/6/1971, 8/6 1971। उत्तर में बाबा कह रहे हैं, याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। याद की यात्रा से जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे, उतनी बुद्धि को जहां चाहे, जितना समय चाहे उतना समय लगा सकते हो। और विल पावर कैसे आती है, बाबा कहते हैं जो आपके पास है बाबा को विल कर दो। और विल करने के तरीका है बाबा के नाम से लिख करके देना। बाबा कहते हैं विल करने की निशानी है सर्वशक्ति विल किया है, जो मेरा है वो किसका है, बाबा का है। बाबा कहते हैं सर्वशक्तियों को विल किया तो बाबा, बाप जो सर्वशक्तियों को विल करते हैं तो सर्वशक्तिमान बाबा साथी बनकर आपको सहयोग देने के लिए बंध जाएगा। विल पावर जो हमारे पास है बाबा को हम विल कर दे। तो आप चेक करो यहां पर जो भाई बहने बैठे हैं बाबा को विल किए हैं, या अभी भी कुछ सवाल आता है मेरा है, ये तो चेक करने की बात है। जो भी भाई बहने बैठे हैं आपको महसूस है कि अभी विनाश के लिए तैयार है, हम सभी परमधाम के गेट खुलेगा, खुलेगा कौन कौन इसको मानते हैं कि खुलने वाला है अभी। ये हंसी मजाक की सवाल नहीं है, ये रियल सवाल है। चेक करें अपने आप को, परिस्थितियां और आगे बिगड़ने वाली हैं। अभी तो बाबा ने ओपन कर दिया, आप लोग आए हैं, फिर 2021 में क्या होने वाला है वो पता नहीं है। तो इसलिए जब विघ्न की बात आता है तो विघ्न के ऊपर बाबा ने एक बात पूछा है, हम बच्चों के लिए विघ्न किस बात पर आती है जब बाबा की याद में बैठते हैं, तो बाबा ने कहा है विघ्न बिल्कुल नहीं आए, उसका साधन क्या है। विघ्न बिल्कुल नहीं आए, ये बाबा ने आंसर देकर रखा है। ये है 11483 की मुरली है, बाबा ने उत्तर दिया है, नोट करिए, हम रोज अभ्यास करते हैं इसके ऊपर, सभी जिसको पूछो ये तो सबकी जैसे कहते ना एकदम कंठस्थ है। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो तो विघ्न आ नहीं सकती। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी, शक्तिशाली के सामने कोई भी माया विघ्न नहीं ला सकती। स्मृति, ये जो आप आंसर लिख रहे हैं ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये आपको भी हम जब आपके पास कोई निमित्त हो जो बनाया है इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे, आपको सर्कुलेट हो जाएगा सब, ताकि आप आंसर को कंपेयर करो। ये जो आपको कराया जा रहा है ये सिर्फ नोट करने की बात नहीं है, एकांत में बैठ करके स्वयं को देखने की। अगर स्वयं को आप देखना चाहते हैं तो ये प्रश्न रखो और देखो स्वयं को, और ये बहुत सुंदर अभ्यास है इस अव्यक्त मास में बाप समान प्रैक्टिस करने के लिए। आप कितने भी क्लासेस सुन लो, पूरा पेज भर के नोट कर लो, लेकिन जब तक स्वयं से बात करके स्वयं के साथ लेन देन नहीं करेंगे तो कोई भी अभ्यास की आप मूर्त रूप धारण नहीं कर सकते। और चेक करें जो ये विघ्न की बात आया है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मैं लेकिन बोलना चाहूंगा, बोलू दीदी सुनंदा दीदी, आप सभी एक ही सेंटर के ना, अलग अलग आए हैं, अलग अलग आए हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम सभी के सामने पेपर अपने अपने संस्कार के आधार पर आने वाला है, तो विघ्न की बात चल रहा है इसलिए आपको जो विघ्न आएगा मेरे को नहीं आएगा। तो एक सुंदर अभ्यास अभी दुनिया में चल रहा है, बाबा ने मुरली में कहा है आपकी नींद ऐसी हो जैसे योग निद्रा है, सुना होगा मुरली आप, और बाबा मम्मा और बाबा के एग्जाम्पल को देकर के ब्रिजवन भाई के आप अनुभव सुने होंगे, उनको जो बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था कि मम्मा जहां सोती थी वहां की बेडशीट पर भी एकदम का सिल्क पर दबा, वो जो क्या होता है फोल्ड होता है ना, फोल्ड भी नहीं होता था, वो इतना सपाट जैसे थे वैसे। वो बताता है कि ये कि योगी की निद्रा कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब आप एक बार चेक करना है कि हमारे बेडशीट कैसे हैं, नहीं करना है। मैं उसको एक एग्जाम के साथ तुलना कर रहा हूं। अभी हम लोग निमांस में एक नया सेंटर बना है कॉन्शियसनेस स्टडी सेंटर के नाम से, और वहां जो साइंटिस्ट लोग हमसे बात कर रहे हैं, जो उनसे मेरा बातचीत हो रहा है, वो नींद के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं आगे जो बीमारी आएगी सारी दुनिया में, उसकी जो मुख्य कारण होगा जो बीमारी, वो है नींद की कमी की वजह से एक दुनिया जिस तरह की मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। और इसकी एक अभी अभी जस्ट इस लॉकडाउन के पीरियड में एमिट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सेलमूर्ति की सहायता से हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है कि 100 में से 90 बच्चे 90 बच्चे डिप्रेशन के शिकार थे, और पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम घबरा गए कि कैसे करें इनके साथ, और उनके साथ प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है। तो इस जो कहने की बात है, हम बच्चे जो यहां पर बैठे हैं, ऐसे बाबा के सारे बच्चे, हम लोगों को निमित्त बन करके इन आत्माओं को सकाश दे करके, वाइब्रेशन दे करके मनोबल बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेडिसिन काम नहीं करेगा। इसलिए जो पॉइंट में बोलने वाला हूं इस समय कि आप जो भी अभ्यास करते हैं, जहां पर भी हैं, गृहस्थ में हैं या सेंटर पर हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि मुझे अपनी स्थिति बाप समान बनाने के लिए एक शब्द को याद रखना है, निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। और एक बार बाबा मुरली में कहा था, जब मोहिनी बहन ने हमारी जब मीटिंग हमारा चल रही थी पर्सनल मुलाकात, जो बड़ी मोहिनी बहन थी ना दादी के साथ, तो बाबा को पूछा गया, बाबा बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, अलग अलग नेगेटिव शक्तियों के प्रभाव, बीमारी बढ़ रही है, तो अभ्यास क्या करें। बाबा ने कहा था कि एक सोमन को याद रखो, उसकी अभ्यास करो, और ये सोमन शिव मंत्र बन जाएगी। और बाबा ने सामने से कहा कि जो बाबा के बच्चे, मैं आत्मा स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, सवेरे उठ करके सोमन में स्थित रहेंगे और दिन में 12 से 13 बार इसको स्मृति में लाएंगे, तो ये सोमन शिव मंत्र बन जाएगा। सुनने के लिए वो साधारण लगता है, लेकिन बाबा वहां पर प्रैक्टिस की जो बात कहा, स्मृति में स्थित होकर के ये शिव मंत्र बनेगा, उसी भाव से इसको प्रैक्टिस करना। तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दो बात आपके साथ कहने वाले हूं। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में किसी प्रकार की लौकिक बातें नहीं करना है, ये बाबा का श्रीमत है। अगर नींद की बीमारी जो हो रहा है उसके वजह से आगे जो प्रॉब्लम होने वाला है उसमें अगर आप सहायक बनना चाहते हो, दुख हरता सुख करता, मास्टर सुप्रीम सर्जन बनना चाहते हो, आज से अभ्यास शुरू कर दो। जिस कमरे में सोएंगे वहां पर कोई भी लौकिक की बात नहीं करेंगे। और जैसे आप बात नहीं करते हैं, और जब आप आपस में मिलकर बात करते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर बात करते हैं, तो कम से कम जैसे आप दृष्टि दे रहे हैं ना किसी को, तो कम से कम 15 से 30 सेकेंड कहां देखना है, शुरू में भ्रुकुटी को देखना है। ये दो प्रैक्टिस करके देखिए आप, एक भ्रुकुटी में जो बैठ आप देखेंगे तो आपको एक संकल्प करना है, ये भ्रुकुटी तक नशीनी आत्मा मैं भी कौन हूं, भ्रुकुटी तक नशीनी आत्मा हूं। अगर आप सोने से पहले आधा घंटा कोई बात नहीं करेंगे, आप सभी दिनचर्या मेंटेन करते, उससे ज्यादा कहने की बात नहीं है, चार्ट लिखना है तो अपनी बात है, अभी अभी रिसर्च हुआ है ऑक्सफोर्ड में, उसमें 100 लोगों को इस बीमारी लोगों को लिया गया था, जो जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में है, तो उनको ये टेस्ट किया गया था कि जो साइकोलॉजिकली दवाई में चल रहे थे साइकेट्रिस्ट के साथ, तो उनको दो ग्रुप किया गया, एक ग्रुप को कहा गया कि आप दवाई लो और ऐसे रहो, दूसरे ग्रुप को कहा गया दवाई लो और रात को सोने से पहले आप एक डायरी लिखो, एक कुछ लिखो आप, एक आधा पैराग्राफ जो आपके बारे में लिखो आप, जो आपको संकल्प आ रहे हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी रही, आप क्या क्या किया, जस्ट अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो तीन फेज में जब स्टडी किया गया, 3 महीने के बाद देखा गया जो रोज लिखते थे डायरी, तो 2 महीने के बाद उनकी दवाई छूट गई थी और 3 महीने के बाद वो बिना दवाई उस ठीक हो गए, वो जो ग्रुप लिख रही थी सिर्फ। अभी स्पिरिचुअल और मेडिटेशन स्टडीज में इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो लोग लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उस चीज को मेडिसिन में, मेडिकेशन में यूज करने की कोशिश किया जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंटेड है। और बाबा की जो श्रीमत है, बाबा ने श्रीमत हमें दिया है कि सोने से पहले आप बिना बाबा को चाट दिए, पोतामेल दिए नहीं सोना है। तो ये जो रात को सोने से पहले बात नहीं करना, बाबा को चार्ट लिखना, ये आगे चल करके ये थेरापी बनने वाला है। और वो ऐसा होगा, आपके सम्मुख कोई आत्मा आएगी, आप उनको दृष्टि देंगे, दृष्टि देते ही उनको जो चाहिए उनकी मनोभाव पूर्ण होगा, सिर्फ ये 2 अभ्यास से। तो आप सभी करेंगे इसको, करके देखिए इसको। लास्ट प्रश्न आप सबके लिए, फिर बंद ये करेंगे। हम सभी बाप समान बनना चाहते हैं, तो बाप समान की कितनी स्टेजेस हैं? बड़ा सिंपल है, बहुत गहरे में नहीं जाते हैं। बाप समान बनने वाले बाबा कहते हैं 3 स्टेज हैं। हम अभी बैठे हैं यहां पर सभी, 3 प्रकार के बाबा के बच्चे बैठे हैं जो बाप समान बनने वाले हैं। ये प्रश्न है 23/5/1974 की मुरली है। बाप समान 3 स्टेज, नंबर वार आत्माएं कौन सी हैं तथा उनकी निशानी क्या है, तो आपको, आप खुश हो जाएंगे सभी, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं सभी। आंसर बहुत सुंदर है और प्रैक्टिकल है। 1, तो समान बनने वाले, दूसरे समीप रहने वाले, और तीसरी जो है सामने रहने वाले। आप स्वयं को देखिए, आप कहां पे हो, समान, समीप या सामने? और उसके आगे बाबा आंसर दे रहे हैं, समान किससे कहेंगे, 1 सेकेंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां लगा दो, ये समान बनने वाले। सेकेंड स्टेज वाले जो है, मन बुद्धि को जहां चाहो वहां, जब चाहो नहीं, कुछ सेकेंड या कुछ घड़ी के बाद लगाने वाले, जिसको कहते हैं बाबा के समीप। 1 सेकेंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट करने वाले, ये दूसरे नंबर की आत्माएं हैं, बाप के समीप रहने वाले। और जो सामने रहते हैं बाप समान बनने के लिए, उसकी स्टेज है कुछ घंटे या दिनों तक स्वयं को सेट करने में लगे रहते हैं, कुछ घंटे या दिनों तक स्वयं को सेट करने में लगे रहते हैं। ये 3 प्रकार के समान बच्चे। तो फिर स्वयं को चेक करें, अभी इस 18 जनवरी की जो महीना चल रहा है, आप कौन से नंबर में आना चाहते हैं? हाँ जी, नंबर 1, नंबर 3। तो नंबर 1 के लिए क्या करना है, बाबा ने क्या कहा, सेकंड में जहां चाहे वहां लगा दे, ठीक है। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट एक सुंदर अभ्यास करेंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा के जो दिल तख्त नशीन बनाना है, तो एक सुंदर एक्सरसाइज आप लोग करके देखिए। मैं बीच बीच में हर हफ्ते में 2 बार करता हूं इसको। अभी बाबा को बुला करके यहां बिठाना है मुझे, सहज है, डिफिकल्ट है? अभी मैं यहां पर बैठी हूं ना, तो मुझे अपनी तख्त भी किसको देना है, ब्रह्मा बाबा ने दिया, मैं नहीं दे सकता। थोड़ी देर के लिए बाबा को देखकर देखते हैं, ऐसे फील करेंगे कि जैसे दिल दर्पण में बाबा को देखिए आप, ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को देखे, आप उनको आह्वान किया और जैसे दो आत्माएं आकर के आपकी यहां पर भ्रुकुटी में बैठ गए, तो मेरा जो दिल तख्त है उस दिल तख्त में बाप दादा विराजमान है, इस स्मृति में स्थित हो जाए।